छोटी सी रचना है और टीकाएं जितनी उसके ऊपर लिखी गई आज तक के इतिहास में इतनी अधिक व्याख्याएं किसी दूसरे ग्रंथ पर नहीं हुई। जैन परंपरा में सभी परंपराओं में मानते हैं ये ऐसे सूत्र हैं जिन पर सबको श्रद्धा और विश्वास है। कोई जैनियों की ऐसी परंपरा नहीं है जैसे स्वीकार नहीं करते हुए सैकड़ों हजारों व्याख्याएं इस ग्रंथ के ऊपर लिखी गई। इसके दो अध्यायों की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं और आज तीसरे अध्याय से चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एक घंटे का समय है अपने पास में इस तीसरे अध्याय को पूरा करने के लिए। तीसरे अध्याय में चर्चा है तीन लोग की, जैन भूगोल की, जैन ज्योग्राफी की, मुख्य रूप से अधोलोक और मध्य लोक की। चौथे में आएगी चर्चा ऊर्ध्व लोक की। अभी अधोलोक की चर्चा है, वहां जाना है किसी को? अधोलोक माने नरक,
नहीं जाना।
नरक की चर्चाएं हैं, क्या किसी को जाना है वहाँ? यदि नहीं जाना है तो पढ़ना है क्या?
आप पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे तो जिस रास्ते जाना नहीं उसको भी पढ़ेंगे।
हमें मालूम पड़े वहाँ नहीं जाना,
पता लगे हमारे को कि हमें वहाँ नहीं जाना है। देखिए सूत्र नंबर एक, स्टार्टिंग में जो नरक की चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में ऐसा कुछ नहीं है जिसे स्क्रीन पर दिखाया जा सकता था। मैं शुरू करता हूँ। रत्न क्या चीज? नहीं नाम कुछ होगा तो देखिए, रत्न शर्करा बालिका बोलेंगे, रत्न शर्करा बालिका पंख धूम तमो महातम है प्रभा भूमियो धनामु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधूध है, सप्ताधूध है। बहुत सुंदर सूत्र है। क्या कहा? रत्न नंबर फर्स्ट, एक नंबर, फिर शर्करा दो नंबर, फिर बालुका तीन, पंख चार, धूम पांच, तम छह और महातम सात। ये सब नाम है सब पृथ्वियों के, पृथ्वियों के नाम है, ये नरकों के भी नाम है। ये सात क्रम से जो नाम बतलाए हैं, प्रभा और भूमियों, प्रभा माने ऐसी चमक वाली भूमियां हैं, प्रभा माने ऐसी रोशनी वाली भूमियां हैं। कैसी है वो भूमियां? तो ये सब नाम बतला दिए। पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा, प्रभा सबके साथ में लगा लो,
रत्न प्रभा,
रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, सब रोशनी है इस तरह। क्यों, किसके नाम है ये सब? नरक पृथ्वियों के। ये नाम यदि पता नहीं हो ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। एक बार एक महात्मा जी व्याख्यान करके निकले प्रवचन करके, और जब वो प्रवचन करके गए तो रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा जी को आलू के ठेले पर आलू का भाव पूछते हुए देखा। तो क्या हो गया इसमें, बहुत लोग खरीदते हैं? नहीं नहीं, वो अम्मा जी थी जो थोड़ी देर पहले प्रवचन में सामने बैठी थी। तो एकदम उनको विकल्प आया, ये वही अम्मा जी है जो सामने बैठी थी, सामने बैठ के प्रवचन सुन रही थी। उन महात्मा जी ने बड़ी अपनी साहित्यिक भाषा में महेंद्र भाई उनसे कहा अम्मा जी से, अरे अम्मा जी ये क्या कर रही हो, आलू के ठेले पर आलू का भाव ये क्या कर रही हो, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो? तो अम्मा जी ने बड़े विनम्र शब्दों में हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी कैसी बातें करते हैं, रत्न प्रभा जैसी जगह पर तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। क्या मतलब, उसको नहीं मालूम था रत्न प्रभा क्या है? रत्न प्रभा तो महात्मा आप जैसे लोग जाएंगे, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? भैया रत्न प्रभा किसी का नाम हो तो क्षमा करना, लेकिन पहले नरक का भी नाम रत्न प्रभा, फिर दूसरे का नाम है शर्करा प्रभा। रत्नों जैसी रोशनी चमक प्रकाश जहाँ है उसका नाम रत्न प्रभा है। सेकंड का नाम है शर्करा, शक्कर जैसी, शक्कर चीनी शुगर जैसा, मतलब बहुत डल हो गई है रोशनी। फिर बालू मिट्टी जैसी, पंख माने होता है कीचड़, धूम माने होता है धुआं, तम मतलब अंधकार है जिस पृथ्वी पर, वो छठा नरक है। महातम मतलब घोर अंधकार है, वो सातवां नरक है। भूमयो ये सब भूमिया है। घना घनाम्बुवात आकाश प्रतिष्ठा सप्ताह भोग है, घनी हवा, घनी हवा क्या हो गया, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, नेक्स्ट का है, कोई वहाँ वहाँ से तुम करोगे मैनेज, ये यहाँ यहाँ है। मतलब चलो, तो ये कह रहे हैं घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अधय है, ठीक है ना, घनी हवा, फिर वात घनी, अम्बु अम्बु मतलब होता है पानी, पानी मिश्रित हवा, ऐसे तीन वात वलय हैं। आपको दिख रहा है ये पूरा लोक, और इस लोक के नीचे पृथ्वियां दिख रही है आपको, सामने भी है, तो ये सात एक के नीचे एक पृथ्वियां हैं। पहली रत्नों जैसी है, फिर शर्करा, फिर बालू का पंख की कीचड़ जैसी, फिर धुआं जैसी, फिर अंधकार महाअंधकार, ऐसी पृथ्वियां हैं ये सब। प्रतिष्ठा सप्ता अधोज है, ये सात है जो एक के नीचे एक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन, ये सब समझ में आ गया ना आपको, सात नरक पृथ्वियों के नाम बतलाए हैं, और कुछ समझ में जैसा नहीं है, ज्यादा समझेंगे समझ के क्या करेंगे, जाना नहीं है
वहाँ।
हाँ बस वो मेरे को बता दिया था महेंद्र भाई ने, पहले आप लोग पहले यहाँ पढ़ चुके हैं सारी बातें, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचो नैत नरक सत्य प्राणी पंच के यथाक्रम, बोलना नहीं है, ठीक नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। तासु मतलब उनमें, त्रिंशत माने तीस, पंचविंशति माने पच्चीस, पंचदश माने फिफ्टीन, दस माने दस, त्री माने तीन, पंचों एक पांच में, एक में पांच कम, पंच न्यून एक, एक में पांच कम, एक में से पांच कम, एक में से पांच कम, नहीं पंचोनेक नरक, नरकों की संख्या शत सहस्राणी, शब्द सहस्त्र आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, आप लोगों से ही आया है यहाँ या इनसे आया हुआ आपके पास में? 100,000 बोलते हैं आप लोग, तो 100,000 भी तो है शब्द सहस्त्राणी, 100,000 माने लाख, अब ये जो है ना 100,000 माने 1,00,000, ये सब में लगाना, त्रिशत माने 30,00,000, पंचविंशति माने 25,00,000, फिर 15,00,000, फिर 10,00,000, फिर 3,00,000, फिर 5 कम 1,00,000, 5 कम 1,00,000, 1,00,000 में 5 कम 99,995 और पंच चैव यथा क्रमम और 5, ये सब बिलों की संख्या उन्होंने यहाँ बतलाई है, इसलिए ये सब स्क्रीन पर कुछ नहीं है देखो देखने का, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर जो है पिक्चर्स, ये सूत्रों के हिसाब से कुछ नहीं है, ये तो कुछ पिक्चर्स भौगोलिक थे मेरे पास में, वो मैं यहाँ दिखाने के लिए आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मतलब कहने का मतलब पहले नरक में 30,00,000 बिल हैं नरकों के, बिल माने नारकियों की उत्पत्ति के स्थान, ये 30,00,000 बिल, एक बिल असंख्यात असंख्यात नारकीय, पैर रखने की जगह नहीं, अच्छा हुआ अपने को जाना भी नहीं, जाओगे तो जगह पूरी मिलेगी आपसे तब जिसको जाना हो, क्योंकि बहुत जगत में पाप करने वाले सब सप्त व्यसनों में पारंगत रहने वाले इन सब के लिए एक ही ठिकाना है नरक, और होता क्या है वहाँ माहौल कैसा है तो देखो तीसरे सूत्र में कहते हैं, नारका नित्य शुभतर लेख्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, बस ये बात मिली यहाँ पर, नारका माने नरक में नारकियों के नित्य नित्य हमेशा ही अशुभ तर लेश्या, लेश्याएं कल कही थी उनमें अशुभ तर कृष्ण नहीं कापूस, परिणाम भी अशुभ, देह भी अशुभ, वेदना भी बहुत और विक्रिया भी अशुभ, परिणाम देह वेदना और विक्रिया हालत खराब है भाई, सब नरकों में सातों नरकों के अंदर हालत बहुत खराब है, किसी भी नरक में कहीं शांति नहीं है। आगे चले, इतना ही नहीं शरीर तो कष्टदायक था ही, मैं भी दुखों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि वहाँ रहने लायक जगह नहीं है, परिणाम भी छोटे होते हैं सबके, विक्रिया की सामर्थ्य होती है लेकिन विक्रिया भी उल्टी उल्टी चलती है, और लेशिया तो खराब है ही, शरीर इतना खराब है, ऐसी दुर्गंधित देह है कि शरीर का एक भी परमाणु या वहाँ मौजूद मिट्टी का एक भी कण अपने यहाँ मयामी में आ जाए तो पूरे मयामी के जीव मर जाए दुर्गंध से,
एक परमाणु
ऐसा वातावरण है वहाँ का नारकियों का, रहते हैं लेकिन क्या करें, वेदना भी बहुत है, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ते कटते मारते क्या करें, लेकिन देखो आगे कह रहे हैं 4 नंबर सूत्र में, परस्परो दीर्घ दुखा, बोल सकते हैं परस्परो दीर्घ दुखा माने एक दूसरे को मारते, परस्पर एक दूसरे को दुख 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 दुख, परस्पर एक दूसरे को कष्ट कष्ट देते रहते हैं, लड़ाई पिटाई मार पीट झगड़ा यही चलते रहते हैं, परस्पर
मरेगी नहीं,
शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पारे की तरह वापस जुड़ जाता है वापस विक्रिय शरीर, तो तकलीफ भी नहीं होती है, लोग ऐसा कहते हैं महेंद्र भाई फिर तो तकलीफ नहीं होती होगी, क्योंकि शरीर तो जुड़ जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दो फिर दोबारा जुड़ जाता है, काई की तकलीफ होती होगी, अच्छा एक काम करते हैं आपका हाथ काट देते हैं ऑपरेशन करके वापस जोड़ देंगे, तैयार है ना? क्यों डॉक्टर साहब, आप जिन लोगों का चीर फाड़ करते थे या आपके दोस्त लोग करते होंगे ऑपरेशन, तो वे उनको तकलीफ नहीं होती होगी, काट दिया फिर दोबारा जोड़ दिया, वापस इंडिया सिलाई कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत तकलीफ है। इतना ही नहीं, संश्लिष्टा सुरोधीरित दुखा, संश्लिष्टा सुरोधीरित दुखा प्राक चतुर्भ्या, प्राक माने पहले, चतुर्भ्या माने चौथे के, माने चौथे नरक के पहले पहले, माने पहले दूसरे और तीसरे नरक में संक्लिष्टा संक्लेश परिणाम वाले असुरो दीरित दुखाः, असुर कुमार जाति के देवों द्वारा भी दुख दिए जाते हैं। संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार जाति के देव होते हैं, वे देव पहले दूसरे और तीसरे नरक में जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं, आपस में झगड़ा कराते हैं। संक्लेश परिणाम होते हैं, असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उनके रहने के स्थान नीचे ही है, अधोलोक में उनके रहने के स्थान। संक्लेश परिणाम वाले परस्पर दुख देते हैं, उनके द्वारा दुख दिए जाते हैं, एक दूसरे को भी तकलीफ देते हैं, और देव लोग भी बहुत अधिक तकलीफ वहां देते हैं, पीड़ाते हैं। चलिए आज हो गए छह, त्रि
अलग हो जाएगी।
शरीर के टुकड़े होते हैं, आत्मा के टुकड़े नहीं होते। शरीर के टुकड़े होने पर भी आत्मा उनमें फैला रहता है, व्याप्त रहता है आत्मा उसके सब में। ऐसा ही करूँ, आपने कभी शिवकली की पूंछ को टूटते हुए देखा? देखा क्या? देखा आपने? पछड़ाती है जो पूंछ होती है, बहुत नाजुक होती है, कोई खतरा होता है ना, छोड़ देती है उसको वही पूंछ को, तो टुकड़े हो जाते हैं उसके, वो तड़फड़ाती रहती है, और कब तक तड़फड़ाती रहती है कि जहाँ वो शिवकली भाग गई है वहां से लेकर आ जाए उसकी जो पूंछ यहाँ तक थी वहां तक पूरे आत्मा के प्रदेश फैले हुए थे, आत्मा फैला हुआ था वहां से वहां तक पूरा का पूरा, और जब तक वो तड़फड़ा रही है तब तक उसमें आत्मा के प्रदेश हैं, फिर वो प्रदेश वहां से निकल जाते हैं, वो जड़ हो जाता है टुकड़ा हिस्सा, और वो आत्मा सिमट करके उस शरीर तक चला जाता है। हाँ प्रदेश, तो आत्मा के प्रदेश संकोच विस्तार होता है, फैलाव होता है, सिकुड़ते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। और आज मेडिकल साइंस भी कहती है इस बात को, ऑपरेशन के मतलब यदि हार्ट टूट गया है कट गया है तो यदि विद इन एक सर्टेन टाइम यदि वहां पहुंच जाए तो ऑपरेशन करके उसको वापस जोड़ सकते हैं, तो वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं वापस आत्मा के प्रदेश उसमें जुड़ जाएंगे। हमारे शहर जहाँ हमारा मकान था पुराना, वहां एक नीचे साल में एक अम्मा जी रहते थे, भाई जी नाम था उनका, वो हमारे फर्स्ट फ्लोर से गिरी नीचे और उनका हार्ट टूट गया, तो बताते हैं काफी देर तक वो टूटा हुआ हाथ ऐसे थोड़ा थोड़ा सारा बहुत देर तक देखा, मतलब बहुत लोगों ने, तो अब वो तो उस जमाने की बात है, उस समय ऑपरेशन होते नहीं थे, लेकिन यदि उसको उठाकर वापस जोड़ दिया जाए और ले जाया जाए तो वो निश्चित समय में वापस उसमें आत्म प्रदेशों का संचार, मतलब सब प्रदेश वो वर्किंग करना चालू हो जाता है।
ये जो शरीर रूपी जो काटे जाते हैं और उनको जो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है वो इसलिए होने की होती है क्योंकि ये मेरा शरीर काटा जा रहा है,
मोह की तकलीफ है। शरीर की कटने से तकलीफ क्या है? मैं कट रहा हूँ, मुझे मार रहा है, मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तकलीफ इस बात की सब नित्यात्म के कारण है। वहां भी तमने दृष्टियों को तकलीफ नहीं है, नरक की परिस्थितियां और नरक का वातावरण इस जीव को दुखी करने में समर्थ नहीं है, तो आपस में एक दूसरे से आपस में हथियार बना लेते हैं। जो विक्रिया कहा ना मैंने, विक्रिया कल कहा था, एक शरीर होता है विक्रिया, उस विक्रिया से हथियार बना लेते हैं, अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं, तलवारें बना लेते हैं और काट लेते हैं एक दूसरे को, लड़ते मरते हैं, कशाएं बहुत है, अब इतना तेज मार कांटों कांटों की आवाजें होती है, जो ध्वनि यहाँ आ जाए, वॉइस यदि यहाँ आ जाए तो बहरे हो जाए, ऐसे ऐसी तेज आवाजें होती है। कितने टाइम बिताना पड़ता है वहां नरक में? ऊंचा मोर्चे 10,000, अधिकतम
35,000।
सातों नरक, सात नरक है, सातों की स्थिति बतला रहे हैं। आगे वाला सूत्र, त्रेष वेग त्री सप्त, देखो त्रेष वेग त्रेष एक, उनमें एक त्री मतलब तीन, सप्त मतलब सात, दश मतलब टेन, सप्त दश मतलब 17, द्वाविंशति माने 22, त्रयस्त्रेशत माने 33, सागरूपमा सागरूपम सत्वानाम परा स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति है, तत्व माने जिंदा रहने की सत्ता उनकी, माने नरक में यदि कोई नारकी जीव जावे तो कितने समय तक रहे, उसकी बात इन्होंने यहाँ बतलाई है। इस तरह से ये नरक की क्या क्या यहाँ संपन्न होती है, हम आ जाते हैं मध्य रूप में, पसंद नहीं आया हमारे।
कौन से जीव नारकी में जाएंगे,
कौन से जीव नरक में जाएंगे, उन्हें क्या बात कर रहे हो आप, नरक में जाने वाले कौन से जीव होंगे, ये कोई स्पेशल जीव थोड़ी ना होते, वही होते जो अपन लोगों को दिखते हैं आसपास में, कोई भी चला जाता है नरक में। नरक में जाने के लिए किसी का कोई फाउंडेशन नहीं है, नरक में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए भाई साहब, हमें वीजा लेना पड़ता हो, परमिशन लेनी पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिना पासपोर्ट के जाता है नरक में कब, राग द्वेष तो मामूली की बातें है, असली बात तो है शराब पीना, असली बात तो है ये सत्य व्यसन नॉनवेज और ये ड्रिंक और ये सब जो काम दिखाई देते हैं मनुष्यों में, खेलना, ये सत्य व्यसन, सत्य व्यसनों के नाम पता है आपको, जुआ खेलना, शिकार तो आजकल नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन वो सब किसी को मारना, मांस खाना, चोरी करना, कुशील व्यभिचार, कंदमूल आदि भी सब उसी में शामिल है, ऐसे महापाप है सब। और जो पैसे का दाम लगा करके जो खेलते हैं, समझ लो आप नरक में जाने के काम है जुआ, सत्य व्यसन में एक है जुआ। मजा तो बहुत आता है क्या, यहाँ मजा आता है, फिर जब डंडे पड़ेंगे तो पता लगेगा क्या होता है, फिर कहते हैं ऐसे क्या पाप किए, मैंने क्या किया था ऐसा, मुझे क्यों आना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ेगा, देखो सबको भुगतना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कुछ कंसेशन मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं था तो बचाव नहीं है, मैं वहां से आया हूँ इंडिया से जयपुर से, यहाँ मैं ड्राइव करूँ और मुझे नहीं मालूम, और वो जो आपकी लेन होती है तो दूसरी यहाँ अलाउ नहीं है, मैं यार ये खाली है इधर चला लेता हूँ, क्यों टिकट देगा, कितने का मिलेगा, $250 मुझे तो मालूम नहीं था, क्या बात कर रहे, मालूम नहीं था भाई साहब, तभी मिलेगा, अरे मालूम नहीं था कह रहा हूँ ना, क्यों क्या बात कर रहे हो, तो कोई खेलने वाले ये कहे मुझे तो मालूम नहीं था कि इससे नरक में जाते हैं, तो बोलो नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गलती है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो अंधा बना देती है व्यक्ति को, और इन सबके लिए व्यसन शब्द का प्रयोग किया है। लत है ये ऐसी जो छूटना बड़ा कठिन लगता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है छोड़ना भी चाहता है ना, तो वो संगति है ना वो छोड़ने नहीं देती, इसलिए हम कहते हैं संगति उनकी करो जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, उनकी संगति, ये जो सत्संग जो कहते हैं क्या है, सत्संग का मतलब क्या है, अच्छे लोगों की संगति, धार्मिक संगति, धार्मिक विचार, कुछ पता नहीं हमारे को क्या हो रहा है, ये तो सब यहाँ का तो कल्चर बहुत खराब है, आप लोग नहीं है इतने खराब मुझे मालूम है, तो कोई हो तो सुधार लेना, नहीं है ऐसे कोई, किसी में ये भी कुछ कमी दिखती, क्योंकि भाई दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने का मार्ग नहीं है, अपने में कोई गलती हो तो सुधार लेने का मार्ग है। हम किसकी कमियां देखें, किसकी गलतियां देखें, मेरे में दोष नहीं है, मेरे में गलती नहीं है। हम तो मुंह से यदि कोई एक बात कहते हैं तो एक जवान से कहते हैं लेकिन दो काम से कुछ सुनते हैं। माने हम जो बात कह रहे हैं इसका मतलब एक बार कहते हैं तो दो बार सुनते हैं और 10 बार अमल करने की सोचते हैं। ये अपने में गलती नहीं है, ये सावधानी रहने की बात। चलो मध्य दोष में आ जाते हैं फटाफट। जम्बू दीप लवणो दावे शुभ नामानो बीच समुद्रा, जम्बू दीप लवणो दावे शुभ नामानो बीच समुद्रा,
जम्बू दीप
उन्हें जम्बू दीप है एक लवण समुद्र आदि शुभ नामों वाले द्वीप और समुद्र है, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। कहाँ? मध्य लोक में। देखो ये जो दिखता था ना आपको, ये जो है ये तीन लोक की रचना है, इधर भी आता है कि इधर इससे नहीं आता, सामने आता है टीवी पे नहीं आता। ये जो है ना यहाँ इस जगह पर है मध्य लोक। अभी इसको अपन दूसरे प्रकार से देखें तो ऊपर से देखें तो ऐसा दिखता है, पिक्चर ऊपर से देखे तो, और अंदर जाएं मध्य लोक तक उतरे नीचे तो ये मध्य लोक ऐसा दिखेगा। ऐसे जम्बू द्वीप आदि असंख्यात द्वीप समुद्र है राउंड राउंड करते हुए, इसको थोड़ा और जूम करें ये ऐसा, ये जम्बू द्वीप है ये यहाँ से यहाँ तक जम्बू द्वीप, उसको चारों तरफ से घिरे हुए लवण नाम का समुद्र, और जूम करो इसको थोड़ा और ये ऐसा, ये जम्बू द्वीप यहाँ से यहाँ तक पूरा द्वीप है ये, और उसको चारों तरफ से घेरे हुए ये समुद्र है। और देखो आपको अच्छे से और देखो, ये जम्बू द्वीप और ये लवण समुद्र शुभ नामों वाले ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ो क्या है इसमें, ये जम्बू द्वीप में
जो बीच में
बीच में अभी अभी आए आगे वाले सूत्र, आगे वाले सूत्र में क्या है, क्या क्या हुआ मैंने
दुबई
है ऐसा, क्या बात कर रहे मयामी एयरपोर्ट दुबई दिख रहा है आपको यहाँ जम्मू द्वीप में? हाँ हाँ जम्मू द्वीप में ही है सब, हाँ सब जम्मू द्वीप में ही है। चलिए आगे, द्वीर द्वीर विष्कम्भा
कम्भा
पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलया कृत्य है। माने देखिए ये सब पहले पहले की अपेक्षा से ये सब राउंड राउंड खींचते हैं, पूर्व द्वीर द्वीर दुगने दुगने विस्तार वाले, जितना द्वीप उससे समुद्र दुगना, समुद्र से दुगना द्वीप, द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप, फिर समुद्र, सब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। ठीक है ना, इसका नाम हो गया द्वीर द्वीर विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों और वलय आकृत्य, ये वलय व्यास जो है इनका वलय राउंड शेप में है, सबके सब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, ये इन्होंने यहाँ कहा इस सूत्र में। आगे वाले सूत्र में कहते हैं तन मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो, तन मध्ये मतलब उसके मध्य में इस जम्बू द्वीप के सेंटर में मेरु पर्वत है, नाभी नाभी के समान खड़ा हुआ, बिल्कुल ऐसे सेंटर में है ना, वृत्तो गोल और योजन शत सहस्त्र, यहाँ से यहाँ तक कितना है योजन शत सहस्त्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है जम्बू द्वीप, एक कोने से दूसरे कोने तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, इसके बीच में सुमेरु पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, इस सुमेरु पर्वत के या इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ बाउंड्री भी बनी हुई है, जिसको जगती कहकर के पुकारते हैं, ये ऐसी जगती है, ये बाउंड्री जम्बू द्वीप है ना, इस जंगल जितने जैसे की जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के ऊपर बहुत बड़ा है, 1,00,000 योजन का है। 1,00,000 योजन को अभी मैं किलोमीटर या माइल के अंदर कैलकुलेट करके बताऊं तो ये आएगा समझ लो आप 4,000 माइल का 1 योजन होता है।
4,000 माइल
का 1 योजन और 1,00,000 योजन है तो कितना होगा बताओ?
1,00,000 × 4,000
कितना हो गया? इतना विस्तार है, बहुत बहुत ऊंचाई से ली गई पिक्चर है और इसको चारों तरफ से नजदीक से इसकी बॉर्डर की पिक्चर ली तो एक बॉर्डर रहेगी। 8 योजन उसकी पड़ेगी। आगे बढ़े इसके अंदर, ये पूरा ऐसा साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, इसमें क्या क्या है वो बता रहे हैं। बागी भरत हेमवत हरि विदेह, रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। नहीं पूछ पा रहे हैं। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी, 7 क्षेत्रों के नाम है। इस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, सीधे सीधे नाम बतला दिए। ये जो पूरा का पूरा ये जम्बूद्वीप था, ये जम्बूद्वीप 7 भागों में बटा हुआ है, 7 हिस्से हैं इसके। ये क्या है उसमें, ये 7 कैसे हो गए हैं? तो फिर आगे देखो, आगे का तद विभाजन है पूर्वापरायता। पूर्वापरायता का मतलब पूर्व से पश्चिम तक। हेमवन महाहेमन निषद नील रुक्मी शिखरिणों वर्षधर पर्वता, ये सब पर्वतों के नाम है। पूर्व से पश्चिम तक पहले हुए, एक का नाम हिमवन, दूसरे का महाहेमन, फिर तीसरे का निषद, फिर नील रुक्मी और शिखरी, ये सब 6 पर्वतों के नाम है। इसका मतलब इस जम्बूद्वीप में 6 विशाल महापर्वत है। इस जम्बूद्वीप में ये जो जम्बूद्वीप दिखाई देता है, इस जम्बूद्वीप में 6 बड़े पर्वत हैं, जिन पर्वतों के कारण ये पूरा का पूरा जम्बूद्वीप 7 भागों में बट गया। ठीक है, गोलाकार था जम्बूद्वीप, राउंड शेप में था, बीच में 6 पर्वत खड़े कर दो, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए ऐसे पार्टीशन डाल दो तो क्या होगा? 7 भाग हो गए। जो 7 नाम अभी आपको बतलाए थे, भरत हेमवत हरि विदेह ऊपर वाले सूत्र में था ना, 10 नंबर वाले में, वो 6 वो क्या है, 7 क्षेत्र, हम लोग उसमें से भरत क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, भरत उनमें एक भरत की चर्चा है, यहाँ जम्बूद्वीप में एक ही है। फिर आगे दासी खंड में 2 है, पुष्करार्ध में 2 है, तो ऐसे 5 पर्वत होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अभी ये जो पर्वतों के जो नाम बतलाए हैं, ये पर्वत किस प्रकार के हैं? तो कहा हेम अर्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाहा, ये सब इनके कलर बतला दिए। आगे पर्वतों के कलर बतला दिए, हेम मतलब गोल्ड, हिम होता है, हिम मतलब बर्फ होता है, हेम मतलब होता है गोल्ड, अर्जुन मतलब होता है चांदी, तपनीय मतलब तपाया हुआ गोल्ड, वैडूर्य नील मणि जैसा, रजत सिल्वर, फिर हेम मयाहा माने गोल्ड के, ये सब पहाड़ हैं। 6 पहाड़ों के जो नाम पिछले सूत्र में कहे थे, उन सब के कलर यहाँ इस सूत्र में बता दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले के तुल्य विस्तारा, माने ये जो पर्वत हैं, मणि विचित्र प्रकार की मणिया पार्श्व भाग में, पार्श्व भाग जानते हैं, ये जो पर्वत खड़ा है इसके ये हिस्से कहलाते हैं पार्श्व, दोनों साइड पार्श्व भाग में विचित्र प्रकार की मणिया जड़ी है, नीचे से ऊपर तक, ऊपरी माने ऊपर, मूले माने नीचे, तुल्य विस्तारा, ये पर्वत एक समान विस्तार वाले ऐसे स्टेट खंडी पर्वत ऐसे। ठीक है, इन पर्वतों के ऊपर, अब इन पर्वतों के ऊपर की बात करते हैं, इन पर्वतों पर क्या है, तो कह रहे हैं इन पर्वतों के ऊपर पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास शेषानोपरी, क्या पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदास शेषानोपरी। देखो पर्वत में है, पर्वतों के ऊपर छह सरोवर है, छह सरोवरों के नाम बतलाए यहाँ, क्या क्या नाम बतलाए, पद्म, जैसे देखिए ये है यहाँ पर, ये पहला पर्वत ये हिमवन है, फिर दूसरा पर्वत है ये महायमवन, ये फिर ये पर्वत है मेषज, फिर एक पर्वत ये है नील, फिर एक है रुक्मी, फिर एक है शिखरी, ये छह पर्वत, छहों पर्वतों के ऊपर ये सरोवर है यहाँ, पद्म महापद्म फिर तिगिच सरोवर फिर केसरी सरोवर पुंडरीक सरोवर महापुंडरीक और पुंडरीक सरोवर, ये सरोवर है ऐसे चौको, ये सब सरोवरों के नाम बतलाए। हृदा, हृदय मतलब होता है सरोवर, आपके सूत्र में हृदय शब्द है ना, पहले तो छह नाम बतलाए हैं, पद्म महापद्म तिगिच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक, ये तो छह नाम हो गए, फिर कहा हृदय, हृदय मतलब होता है सरोवर, तेषाम उपरी उनके ऊपर, उनके ऊपर ये छह सरोवर हैं, क्या है ये, अब इन सरोवरों की लंबाई चौड़ाई बतला रहे, सरोवर कितने लंबे चौड़े हैं, प्रथमो माने पहला सरोवर, सबसे फर्स्ट नंबर वाले सरोवर की बात कर रहे हैं, अभी देखो ये जो था ना जम्बूद्वीप, ये जम्बूद्वीप में पहले पर्वत के बगल वाले सरोवर पर आ जाते हैं, ये पर्वत है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पर्वत है, इतना चौड़ाई वाला, बहुत चौड़ाई है इस पर्वत की, ये हाइट है यहाँ पर उस पर्वत के बीच में, आपको हाइट में ही दिख रही होगी, और ये सरोवर है, लेकिन पहला जो सरोवर है ये योजन सहस्त्र आयाम, 1000 योजन लंबा है ये ऐसा, तद अर्ध उसका आधा मतलब 500 योजन विष्कम्भ वाला है। सूत्र देखो वापस क्या था, प्रथमो माने पहला सरोवर योजन सहस्त्र 1000 योजन, आयाम आयाम माने विस्तार, तद अर्ध विष्कम्भो, तद अर्ध विष्कम्भो दिख रहा है, तो तद अर्ध विष्कम्भो उसका आधा विष्कम्भ है, माने 1000 योजन लंबा है तो 500 योजन चौड़ाई है, हृदय माने सरोवर की, हृदय मतलब सरोवर, फिर आगे एक सूत्र दिया दश योजना है, अभी देखो ये जो दिख रहा था आपको इसको और थोड़ा सा पास लेते दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको सरोवर पर्वत के ऊपर, अभी और थोड़ा पास ले जाओ तो ये सरोवर है पर्वत के ऊपर, और थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊं तो ये सरोवर है, ये पर्वत की, पर्वत के ऊपर खड़े हैं अपन लोग, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, 1000 योजन लंबा 500 योजन चौड़ा ये सरोवर है, ये दश योजनाव गा है, सूत्र क्या है, माने इस सरोवर की गहराई 10 योजन की है, और इतना ही नहीं तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में सरोवर के बीच में ये एक योजन का पुष्कर है, ये पुष्कर माने होता है कमल, एक योजन का कमल है सरोवर के बीच में, अरे बहुत सारे कमल है, अभी तो एक की बात की है हम, अभी उमर स्वामी आचार्य एक की बात करते हैं, अभी नहीं दिख रहा है आपको, थोड़ा और पास से दिखाता हूँ, ये देखो आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभी तालाब दिख रहा है ना आपको, तालाब के बीच में कमल दिख रहा है ना, तन मध्य योजनम पुष्करम, अभी और नजदीक से दिखाऊं इसको, ये देखो अब तो दिख गया अच्छे से, और नजदीक से दिखाऊं और लो, ठीक है, एकदम अलग अलग फोटो खींचे वहां जाकर के, सबको मजाक दिखती है सच में, ये फोटो कहां से आई, तो अलग अलग एंगल से बताओ मेरे को, ये अलग अलग एंगल से फोटो कहां से आई है, ये अलग अलग एंगल से क्यों बनाई है फोटो, ऐसे तो कौन बनाएगा इतने एंगल से फोटो? आजकल ये फोटो एक ऐसी है कि डिजिटल पूरा का पूरा काम चल रहा है। मैंने जैसा कि शायद कल कहा था, काफी लंबा काम चल रहा है और पूरा डिजिटल बन रहा है। वीडियो जैसा वो बनेगा, हम लास्ट में दिखाएंगे आपको 3 मिनट का वीडियो। तो ये चलते हुए ये सरोवर आ गया और उसमें वास्तव में पूरा सेम साइज में 1 लाख योजन का, और उसमें कैमरा जाकर के वो अलग अलग जगह जाकर के पिक्चर खींची हुई है उसने। ये कलमों की सरोवर की तन मध्य योजनम पुष्करम, 1 योजन का वहाँ पुष्कर है। इतना ही नहीं, इस कमल में क्या है आपने जो पिक्चर में देख लिया पहले ही, देखो आगे क्या कह रहे हैं। सूत्र नंबर 18, तद द्विगुण द्विगुणा पुष्कराणी के, माने तद द्विगुण द्विगुणा पुष्कराणी के। ये तो पहले सरोवर की बात कर रहे हैं। सरोवर कितने हैं ऐसे? 6 पर्वत थे, तब पर 6 सरोवर थे। दुगने विस्तार वाले सरोवरों का विस्तार भी आगे दुगना है और कमल का विस्तार भी आगे आगे दुगना हो गया है। 19 नंबर देखो, तन निवासिनियों उसमें निवास करती हैं। कौन? देवियां। माने ये जो कमल था, इस कमल के ऊपर महल है और उस महल में देवियां निवास करती है। ये देख रही है आपको बीच में एक देवी, पता है कौन सी देवी है? श्री देवी है, श्री देवी है। ये श्री देवी है? नहीं नहीं, श्री देवी है। तो मरने के पहले भी कहीं थी क्या? वो सदा साल रहती है वहाँ। वहाँ जो देवी रहती है उसका नाम श्री देवी है। आप अपनी श्री देवी सोच रहे होंगे, नहीं। ये लिखा है आगे देवी है के बाद में लिखा है श्री, ये देवी का नाम है श्री। दूसरे तालाब में जो रहती है उसका नाम है गिरी। तीसरे तालाब में रहती है उसका नाम है धरती। चौथे तालाब वाली का नाम है कीर्ति। पांचवे वाली का नाम है बुद्धि। और छठे तालाब में जो रहती है उसका नाम है लक्ष्मी। पल्ल्योपम स्थित है, माने पल्ले की स्थिति है। पल्ले एक टाइम पीरियड है, एक पल्ले की स्थिति, इतनी आयु है उन देवियों की, एक पल्ले की आयु है। पल्ले कितना बड़ा होता है, अब वो गड्ढा खोदना पड़ेगा उसके लिए, अभी समय नहीं है इतना गड्ढा खोदने के लिए, है ना। तो सामान्य परिषद का, सामान्य जाति के देवों के साथ में ये देवियां यहाँ रहा करती है, ये देवियां रहती है, ठीक है। अब ये सब जितनी बातें बतलाई है, ये सब सरोवर के ऊपर की स्थिति, ये कहाँ थे? ये देवी कहाँ है? कमल के ऊपर। कमल कहाँ है? बोले सरोवर में। और सरोवर कहाँ है? बोले पर्वत के ऊपर। आपको सब तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि इनमें से कहती है नदियां सरोवरों से, उन नदियां जो बहती हैं, उन नदियों के नाम यहाँ इस 20 नंबर के सूत्र में बतलाए हैं। और कुछ नहीं, सिर्फ नदियों के नाम, गंगा सिंधु, दो दो के जोड़े से नाम समझ लो, गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्ण रूप के तुला, दो हो गए, माने स्वर्ण तुला और रूप के तुला, फिर रक्ता और रक्तोदा, ये 14 नदियां हैं। क्षेत्र कितने थे? 7 क्षेत्र थे और 14 नदियां हैं। तो ऐसा लगता है कि 7 हैं और 14 हैं, तो बिल्कुल जैसा आपको लग रहा है वैसा ही है। एक एक क्षेत्र में दो दो नदियां बहती है, एक एक क्षेत्र में दो दो नदियां बहती है। 6 पर्वत है, 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर थे, सरोवरों से बह रही है नदियां, ठीक है। तो अपना पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र, उसमें 2 नदियां बहती है। ये देखो, ये जो था ना पहला पर्वत, इस पहले पर्वत के ऊपर सरोवर, इस सरोवर से नदी बह रही है, एक बह रही है उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ, और 2 नदियां आ रही है इधर। एक का नाम है गंगा नदी, दूसरे का नाम है सिंधु नदी। ये कहां पर्वत के ऊपर से गिर रही है? ये जो हाइट दिख रही है ना बीच में, ये हाइट है और यहाँ नदी गिर रही है। ये जब नदी गंगा नदी यहाँ से बढ़ती है तो बढ़ती हुई यहाँ आगे बढ़ने पर जब इस जगह पर आकर के जब ये गिरती है तो वहां पर एक कूट बना हुआ है, गंगा कूट, गोमुख बना हुआ है, गोमुख से गिरती है पर्वत की हाइट से, देखो ऐसे इस तरह से ये पर्वत है। ये जो दिख रहा था तो बहुत दूर से जो आपको जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्वत की हाइट नहीं दिख रही अभी आपको, यहाँ पर्वत की नहीं दिख रही है ना हाइट, इस जगह पर है ये हाइट है यहाँ, ये जो लाइन है ये पूरे पर्वत की हाइट है। मेरा हाथ मेरा बहुत जूझता है, कंपन है क्या, क्या बात है। चलो तो इस जगह देखो आप, अभी क्या दिखा रहा हूँ मैं यहाँ आपको, यहाँ देख रहा हूँ ये जो पोर्शन है ना, इस जगह का यहाँ एक लाइट दिख रही है, इस पोर्शन को एक लाइट किया, हाईलाइट किया, तो ये आ गया, ये गोमुख है, यहाँ से वो गंगा नदी बह रही है, ये बह नहीं रही है यहाँ तो, फिर बह रही है, दिख रही है आपको, दिख रही है अरे भाई, नहीं दिख रही है ये गंगा नदी, ये वहां से बहती हुई ये नीचे आती है और फिर नीचे गिर करके वो बहती हुई भरत क्षेत्र के अंदर बहती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है, ये नदियों के नाम हो गए 20 नंबर, 21 नंबर देखो, द्वयोर पूर्वा पूर्वगाह, द्वयोर पूर्वा पूर्वगाह, माने दो दो के जोड़े से है ये सब नदियां, द्वयोर पूर्वा पूर्वगाह, पहले वाली पूर्व दिशा की तरफ बहती है, मैंने गंगा पूर्व में सिंधु पश्चिम में, शेषास्व परगाह, शेष जो है वो दूसरी साइड में बहती है। भाई दो दो के जोड़े से थी ना गंगा सिंधु, तो पहले वाली पूर्व दिशा में, फिर आगे सूत्र दिया शेषास्व परगाह, बाद वाली पश्चिम दिशा में, शेषास्व परगाह मतलब बाद वाली पश्चिम दिशा में बहती है। इतना ही नहीं, ये कहते हैं इन नदियों में चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधुवा देव नदी है, सूत्र नंबर 23, 14 नदी चतुर्दश नदी सहस्त्र 14,000 सहायक नदियां हैं गंगा सिंधु आदि नदियों की, माने जो गंगा नदी अपन ने यहाँ देखी है ये गंगा नदी, ये वो नहीं है जिस गंगा नदी को अपन देखते हैं ना दुनिया में, ये अप्रतिम गंगा नदी है, इसकी सहायक 14,000 नदियां हैं, ऐसा कह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। भरोसा नहीं होता तो भरोसा करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं भरत क्षेत्र के विस्तार की तरफ, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, कहा सूत्र देखो 24 नंबर, भरत है माने भरत क्षेत्र, षड विंशति माने 26, पंच योजन शत 500 योजन और षड विंशति माने 26 माने 526, क्या निकला अर्थ, षड विंशति माने 26। ठीक है, फिर पंच योजन शत माने 500 योजन माने 526 योजन, इतना ही नहीं षट चैकोण विंशति भागा योजन से, षट एक न्यून विंशति माने 6 और अपॉन 19 एक न्यून विंशति 19 भागा योजन से, माने कुल मिलाकर के इतना बारीक कैलकुलेशन है, 526 सहित 6/19 योजन, 526 योजन और 6/19 योजन, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। ये भरत क्षेत्र एक कोने से दूसरे कोने तक 526 योजन का फैला हुआ है। फिर सब द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष भर वर्षा विदेहांता, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा उससे दुगुना दुगुना विस्तार है, किसका, वर्ष भर माने पर्वतों का, वर्षा माने क्षेत्रों का, विदेहांता विदेह क्षेत्र तक माने भरत क्षेत्र से दुगुना पर्वत, आपको मालूम भरत क्षेत्र, फिर पर्वत था, फिर क्षेत्र था, फिर पर्वत था, फिर क्षेत्र था, ऐसे थे ना, छह पर्वत और पांच क्षेत्र है पूरे जम्मूद्वीप में। तो यहाँ ये कह रहे हैं विदेह तक तक दुगने दुगने होते गए हैं, फिर कहा उत्तरा दक्षिण तुल्या और बाद में आधे आधे होते गए हैं, नहीं ख्याल में है आप लोगों के? हाँ, अर्थ की पोजीशन मैं बताऊंगा अभी। देखो क्या था यहाँ, इसमें ये कह रहे हैं ये भरत क्षेत्र, फिर दुगना पर्वत, फिर दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना, फिर दुगना, विदेह तक डबल डबल होते गए। फिर उत्तर नॉर्थ साइड में क्या है, दक्षिण तुल्या, जैसा साउथ में था वैसा नॉर्थ में है। उत्तरा दक्षिण तुल्य सूत्र पढ़ा ना अपने 26 नंबर सूत्र, उसका अर्थ ये जैसा साउथ में है वैसा नॉर्थ में। चलो फिर आगे, भरत ऐरावती और वृद्धि रातो षट पमियाभ्याम उत्तर पिण्य वसर पिण्याम, माने भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है छह कालों का, माने छह काल परिवर्तन सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होता है। सूत्र के है 27 नंबर सूत्र, भरत ऐरावती हो माने भरत और ऐरावत क्षेत्र का वृद्धि रातो, वृद्धि भी होती है, वृद्धि होने का मतलब काल बढ़ता जाता है, रातो घटता जाता है, माने उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल, षट समयाभ्याम छह कालों में उत्सर्पणी और अवसर्पणी भ्याम, माने छह काल में उत्सर्पणी और छह काल में अवसर्पणी, इन कालों का परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ इस भरत क्षेत्र में ही होता है, इस भरत क्षेत्र में होता है भरत और ऐरावत, भरत ऐरावती हो। इधर बाकी के एरिया में क्या होता है?
हाँ,
ऐरावत बिल्कुल अपोजिट साइड सामने अदर साइड, ताभ्याम पराभूमियों वस्तिता, कि बाकी के क्षेत्रों में क्या काल परिवर्तन नहीं होता? ये नहीं होता, ताभ्याम परा इनको छोड़कर भूमियों भूमिया अवस्थिता अवस्थित है, माने भरत क्षेत्र के अलावा विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, हेमवत हरि क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, रम्य हैरण्यवत क्षेत्र में भी काल परिवर्तन नहीं होता, एक ही समय रहता है। नहीं, विदेह में हमेशा चौथा और बाकी सब जगह पर अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है। फिर आगे चलो, ये अभी बीच में क्योंकि अब अवकाश नहीं है आगे, चलो यही बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये जो भरत क्षेत्र है इसके दो मिनट चर्चा कर लेता हूँ आपसे, इतना है अभी टाइम अपने पास में, क्योंकि 28 हो गए ना तो 10 और बचे, ज्यादा नहीं है सूत्र। इस भरत क्षेत्र में क्या है, भरत क्षेत्र में बीच में एक विजयार्थ नाम का पर्वत है, इस विजयार्थ पर्वत के कारण इस भरत क्षेत्र के और ये दो नदियां बह रही थी, ये था वो सरोवर, इस पर्वत के ऊपर हिमवन पर्वत के ऊपर सरोवर था, सरोवर से एक नदी बह रही थी गंगा, दूसरी बह रही थी सिंधु, बीच में था विजयार्थ नाम का पर्वत। तो भरत क्षेत्र छह भागों में बट गया, एक आर्यखंड और एक दो तीन चार और पांच, ये पांच मलेच्छ खंड, ठीक है, पांच मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड, ये छह खंड हो गए। आप लोगों ने पहले ही ये सब विषय पढ़े हैं इसलिए मैं ज्यादा आपको समझने में जोर भी नहीं आ रहा होगा, समझने आ रहे हैं ना सर मलेच्छ भाई, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा जो भी है, पर कुछ है मतलब तीन बार पढ़ी है। हाँ हाँ, नहीं एक बार मैंने भी यहाँ समझाई थी, पांच सात साल पहले मैंने भी एक बार यहाँ समझाई थी और प्रोजेक्टर पर भी लिया था और वो बोर्ड पर भी समझाया था 2011-12 में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो ये जो पर्वत है इसके कारण क्या इससे हो गए, बीच के हिस्से का नाम आर्य खंड, अपनी पूरी की पूरा अर्थ ये जो डॉट दिख रहा है ना इसमें से में है, जैसे आप दुनिया कहते हो ये छोटा वाला रेड डॉट जो दिख रहा है मेरा वाला, हाँ ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अपना अर्थ जैसे कह रहे हैं आप लोग जैसे कहते हैं, ये सब कुछ नहीं है, तो विज्ञान पर्वत की स्थितियां हैं सारी, विज्ञान पर्वत की स्थितियां हैं, विज्ञान पर्वत है ऐसा, वहाँ आकर्षण की अत्यालय है, सारी रचनाएं हैं इस तरह की, आकर्षण की अत्यालय है, उनके अत्यालयों के अंदर एक क्वार प्रतिमाएं हैं, ये स्थिति है पूरी, ये पूरे जम्मू द्वीप की ऐसी यहाँ है, वो भरत क्षेत्र इस जगह पर इस डॉट में, और यही अपनी दुनिया है इस जगह,
मुंबई
नहीं सब क्षेत्रों में, पूरा जम्मू द्वीप है ना, ये पूरे जम्मू द्वीप में है सारी सब है जम्मू द्वीप में। चलो अब आगे चलते हैं, एक दी त्री पल्लोपम स्थित हो हेम मतक हरि वर्षक देव गुर्व कहा, मैंने एक पल्ले दो पल्ले और तीन पल्ले की जो स्थिति है वो हेमवत हरि और विदेश क्षेत्र की है, ठीक है ना, देव गुरु उत्तर गुरु वगैरह की भी स्थिति इसी तरह की है, हेमवत क्षेत्र में एक पल्ले, हरि क्षेत्र में दो पल्ले और देव गुरु में तीन पल्ले की स्थिति है, ऐसा इस सूत्र के माध्यम से कहना चाहते हैं। तथोत्तरा अपोजिट साइड में वो स्थिति है, बाकी के जो क्षेत्र थे ना तीन के अलावा, बाकी जो उधर होंगे तीन उनमें भी उत्तर में वैसी स्थिति है, बाकी बीच में एक विदेश क्षेत्र बच गया, उसमें क्या है तो सूत्र दिया 31 विदेश असंख्य काला संख्य काला, माने विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है, असंख्यात नहीं, विदेश संख्य काला माने विदेश क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु होती है, छोटी पूर्व की आयु होती है मनुष्य त्रियंशों की, तो भरत क्षेत्र का विस्तार किसका बतलाया था आपने, भूल गया मैं, भूल गए तुम, तुझे याद रखने के लिए बतलाता हूँ, 526 योजन जो भूल गए हो उनके लिए उमा स्वामी आचार्य 32 में दोबारा लिख रहे हैं, वर्तस्य विष्कम्भ वर्त क्षेत्र का विष्कम्भ जम्बू दीपक से 90% भाग है, माने जम्मू द्वीप के 190वें हिस्से के बराबर, बस अब कैलकुलेशन करते रहना आपके हिसाब से, क्या था जम्मू द्वीप के 1,00,000 योजन का था जम्मू द्वीप, 1,00,000 में 100,000 में आप 190 का भाग दें, 190 से उसको डिवाइड करें तो जो फिगर आएगा वो होगा 526/6/19 योजन, इतना भारत क्षेत्र का विस्तार है, बोले इतना ही नहीं दुनिया तो बहुत बड़ी है, जितनी की देखी इतनी नहीं है, द्वीर धात की खंडे धात की खंड उससे दुगने विस्तार वाला है, उससे दुगने विस्तार वाला है धात की खंड, पुष्कर अर्धे च और पुष्कर अर्ध में भी दुगनी रचनाएं हैं, ये सब जम्बू द्वीप था ना, इस जम्बू द्वीप से दुगनी रचनाएं इसमें धापकी खंड नाम के द्वीप में, जम्बू द्वीप से दुगना और पुष्करार्ध नाम का जो द्वीप है उसमें उससे भी दुगनी रचनाएं है, माने ये जम्बू द्वीप, ठीक है, इस जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र चारों तरफ से, समुद्र और समुद्र के बाद में फिर आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, ये जम्बू द्वीप फिर ये समुद्र और समुद्र के बाद में सिर्फ क्षेत्र है वो है धात की खंड, तो जम्बू द्वीप में जितनी भी रचनाएं हैं उनसे डबल है इस दूसरे वाले क्षेत्र में बाहर वाले में, वो चारों तरफ राउंड शेप में उसमें है वो सब, और ये कह रहे हैं पुष्करार्ध में भी ऐसा ही है कि मनुष्य कहाँ रहते हैं इसमें, बोले प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्या 35 प्रांग माने पहले, मानुषोत्तरान माने मनुष्य क्षेत्र से पहले पहले मनुष्या मनुष्य रहते हैं, माने एक पुष्करार्थ द्वीप है उसके आधे हिस्से तक मनुष्य रहते हैं, 2.5 द्वीप है वहां तक मनुष्यों के रहने की बात कही है, पारियाम ले एक एक वीडियो दिखाना है, अभी एक वीडियो दिखाना है इसके पास, एक बार हाँ ठीक है, अच्छा ये देखिएगा यहाँ पे देशपति कमा लेते दिखाता हूँ, फिर आर्या प्रांग मानुष उत्तरान मनुष्या मानुष उत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य हैं, मनुष्य दो तरह के होते हैं, आर्या मृच्छाश्य, आर्या मृच्छाश्य माने आर्य और मृच्छ, आर्य और मृच्छ ये दो तरह के मनुष्य होते हैं, मेरे कर्म भूमि और भोग भूमि कहाँ कहाँ होती है, कर्म भूमि और भोग भूमि कहाँ कहाँ होती है? तो कहा भरत ऐरावत विदेहा, 37 नंबर पुत्र, भरत ऐरावत विदेहा, भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र, ठीक है ना, भरत ऐरावत विदेहा, ये कहते हैं कर्म भूमियों, ये तो सब कर्म भूमिया है, भरत ऐरावत और विदेह में कर्म भूमिया है, ठीक है ना। और कह रहे हैं यहाँ अन्यत्र माने इसके अलावा देव कुरु उत्तर कुरु भी है, देव कुरु और उत्तर कुरु जो है वो उसको छोड़कर, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है। क्या सूत्रकार हुआ? भरत ऐरावत विदेहा, भरत ऐरावत और विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, लेकिन अन्यत्र देव गुरु उत्तर गुरु है, देव गुरु और उत्तर गुरु को छोड़कर, देव गुरु उत्तर गुरु का क्षेत्र विदेह क्षेत्र के बीच वाला पार्ट है, उसको छोड़ दो तो बाकी सब जगह कर्म भूमि है। और कह रहे नर स्थिति परावरे, मनुष्य नर, नर मतलब होता है मनुष्य, स्थिति माने आयु, परावरे माने उत्कृष्ट, पर मतलब उत्कृष्ट और अवर मतलब, अवर मतलब उल्टा, तो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी होती है मनुष्यों की? मनुष्य व्यक्ति यदि जिंदा रहे और मरे तो कितने कम से कम समय जिंदा रह सकता है और कितना ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है? तो नर स्थिति, मनुष्य की स्थिति परावरे उत्कृष्ट और जघन्य, त्रि पल्योपम ये तो है उत्कृष्ट, मनुष्य तीन पल्ले तक रहे, और जघन्य कितनी है? अंतर्मूर्ते, अंतर्मूर्त जघन्य स्थिति है मनुष्यों की, अंतर्मूर्त के लिए पेट में आए और मर जाए क्या स्थिति है। और तिरियम के, और तिरियंचो की भी तेम यही स्थिति समझनी चाहिए। तो इस तरह से ये अपने यहाँ तीसरे अध्याय की हमने कुछ चर्चा की है, आप ये देखिए कुछ अपना ये यूनिवर्स की क्या पोजिशन है उसको हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एक ट्रायल है, ये ट्रेलर है, ट्रेलर है, ध्यान से वॉल्यूम भी आता है, जरूरत नहीं वैसे वॉल्यूम की, वही सारी पिक्चर जो भी आपने देखी थी, ये किस तरह की पिक्चर थी जो भी आपने देखी थी? हम ऊपर से दिखाएंगे, ऊपर से चलते हैं, ऐसे नीचे हो सकते हैं। सर्वों की तरफ से देखते हैं तो मध्य लोग ऐसा दिखता है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा नहीं करते। ये अपना भारत क्षेत्र दुनिया, ये नॉर्थ साइड की तरफ चले गए अपन ऐरावत क्षेत्र आने एक लाख योजन तक मेरी पर बताई गई थी तो मेरे ऊपर कैसी खर्च तो इस तरह से ये अब आपको पता क्या हुआ कि फोटो खींची है जगह जगह से तो ये तीन रूप के अंदर हमने अनंत काल बिताया है और हमें भविष्य में यदि यहाँ समय नहीं बिताना हो और इस तीन लोक में परिभ्रमण नहीं करना हो तो एक ही उपाय है कि पारिणामिक भाव स्वरूप अपने स्वभाव को देखो तो काम होगा अगर भाई से घूम रहे हैं।